नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। गौतम अडानी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं। अडानी ग्रुप की सबसे प्रतिष्ठित और फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर शुक्रवार को 35% तक गिर गए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पर नजर डालें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद 2 फरवरी तक अडानी ग्रुप की 9 कंपनियों के कुल 9.22 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा नुकसान अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी टोटल गैस को हुआ। अडानी ग्रुप की 9 कंपनियों की अब शेयर बाजार में टोटल वैल्यूएशन 10.41 लाख करोड़ रुपए रह गई है। महीने भर पहले तक इनका मार्केट कैप 19.63 लाख करोड़ रुपए था। अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी टोटल गैस 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनको कुल नुकसान में करीब आधी हिस्सेदारी है। 30 दिसंबर 2022 को अडानी एंटरप्राइजेस की टोटल वैल्यूएशन 4.40 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब घटकर महज 1.78 लाख करोड़ रुपए रह गई है। अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों की बिक्री करने वाले गुजराती सहकारी दुग्ध विपणन संघ ने गुजरात को छोड़कर बाकी सभी बाजारों में दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। GCMMF के प्रबंध निदेशक जैन मेहता ने कहा कि दूध के दामों में बढ़ोतरी गुजरात में लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गुजरात को छोड़कर हमने दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे अन्य बाजारों में दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। फिलहाल गुजरात में दूध के दाम नहीं बढ़ेंगे। अमूल दूध की नई कीमतें शुक्रवार सुबह से प्रभावी होंगी। GCMMF ने एक बयान में कहा कि दाम बढ़ने के बाद अमूल ताज़ा का 1 लीटर का पैकेट 54 रुपए का, 1 लीटर अमूल गोल्ड 66 रुपए का, 1 लीटर गाय का दूध 56 रुपए का और अमूल A2 भैंस के दूध का पैकेट शुक्रवार से 70 रुपए में मिलेगा। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जारी होने के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर मूल्य में आई बड़ी गिरावट के मद्देनजर इन कंपनियों के पास नकदी की स्थिति समेत उनकी वित्तीय मजबूती या जुझारू क्षमता का आकलन कर रही है। इन प्रतिकूल घटनाक्रमों की वजह से समूह के निवेश या अगले 1-2 साल में परिपक्व हो रहे ऋण के पुनर्वृत्त के लिए पूंजी जुटाने की क्षमता घटेगी। अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर खुले तौर पर शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया। कंपनी के इस आरोप के बाद समूह की कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए आरोपों को खारिज किया है। देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में जनवरी माह के दौरान नरमी रही, जिससे क्षेत्र की वृद्धि दर कम हुई। शुक्रवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण से ये कहा गया। पिछले महीने उत्पादन और बिक्री धीमी गति से बढ़े और भविष्य के परिदृश्य को लेकर सेवा प्रदाताओं के बीच विश्वास के कमजोर स्तर ने रोजगार सृजन को बाधित किया। मौसमी रूप से समायोजित S&P ग्लोबल इंडिया सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक जनवरी माह में घटकर 57.2 रह गया। दिसंबर में ये 58.5 पर था। दिसंबर के मुकाबले ताजा आंकड़ा कम होने के बावजूद अपने लंबे समय के औसत 53.5 से ऊपर रहा। ये वृद्धि मांग की अनुकूल परिस्थितियों तथा नए कार्य में वृद्धि जारी रहने से हुई। सेवा PMI लगातार 18वें महीने 50 अंक से अधिक है। खरीद प्रबंध सूचकांक की भाषा में 50 से अधिक अंक गतिविधियों में विस्तार को दर्शाता है, जबकि 50 से कम अंक का अर्थ संकुचन है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केरल का बजट वित्त मंत्री KN बाल गोपाल ने शुक्रवार को पेश किया, जिसमें मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के साथ ही बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए कई पहलों की घोषणा की गई। राज्य के वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कुल 2000 करोड़ रुपए राज्य में मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए रखे गए हैं। बजट में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया, वहीं 600 करोड़ रुपए रबड़ सब्सिडी के लिए रखे गए। बाल गोपाल ने कहा कि अनुसंधान एवं विकास पर और जोर देने के लिए अनुसंधान एवं विकास बजट अलग से लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के घरेलू उत्पादन, रोजगार और निवेश अवसरों को बढ़ाने के लिए केरल में निर्मित परियोजना पर और ध्यान दिया जाएगा। इस्पात क्षेत्र की कंपनी कामधेनु लिमिटेड का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 82% बढ़कर 12.02 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने शुक्रवार को बयान में ये जानकारी दी। कामधेनु लिमिटेड को पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के दिसंबर तिमाही में 6.6 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। इस दौरान उसकी परिचालन आय भी 23% बढ़कर 182.7 करोड़ रुपए हो गई। इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड को दिसंबर 2022 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 133.29 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ हुआ। कंपनी को इसकी अनुषंगी स्प्रिंगवे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की बिक्री से लाभ में मदद मिली। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि उसने पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 16.24 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। इंडिया सीमेंट्स की परिचालन आय आलोच्य तिमाही में 10.37% बढ़कर 1,281 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। एक साल पहले इसी अवधि में ये 1,160.63 करोड़ रुपए थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।